नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर बात कर रहे हैं, महाशक्ति की लोक यात्रा। ये डॉक्टर प्रणव पड्डिया जी ने लिखी है और ब्रह्मवर्चस्व ने इसे संपादित किया है। और ये पुस्तक है गायत्री परिवार की सह संस्थापिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर। एक बहुत ही भावपूर्ण संकलन है उनके जीवन का।
जी बिल्कुल।
आज हम इसके एक खास अध्याय पर ध्यान देंगे, परिवार ही नहीं सबकी माता जी। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वंदनीय माता जी सिर्फ अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे अखंड ज्योति संस्थान और उससे जुड़े न जाने कितने लोगों की माता जी बन गए।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उनके जीवन का।
तो चलिए इस यात्रा को थोड़ा और समझते हैं। पुस्तक में यह आता है कि जब वो मथुरा आई अखंड ज्योति संस्थान में, तो उन्होंने आते ही कई जिम्मेदारियां संभाल ली। ये कैसे हुआ, मतलब इतनी जल्दी वो सबकी इतनी प्रिय कैसे बन गई?
देखिए, पुस्तक इसी बात पर जोर देती है कि ये उनके सहज प्रेम, उनकी जो सहनशीलता थी और जो उनका अथक परिश्रम था ना, उसी का नतीजा था। जैसे वो वहां आई, उन्होंने सिर्फ घर परिवार नहीं देखा।
अच्छा।
बल्कि पूरे संस्थान का जो प्रबंधन था उसे अपने स्नेह और सेवा भाव से संभालना शुरू कर दिया।
जी।
और इसी वजह से, मतलब आस पड़ोस के लोग हों या संस्थान आने जाने वाले, सब उन्हें अपने आप ही माता जी कहने लगे।
उनकी दिनचर्या के बारे में जो पुस्तक में बताया है वो तो यकीन करना मुश्किल लगता है। देर रात तक काम करना, आगंतुकों की व्यवस्था देखना।
हाँ।
और फिर ठीक सुबह 3 बजे उठ जाना।
हाँ।
नियमित रूप से।
हाँ।
और योग साधना में लग जाना। ये कैसी साधना थी उनकी?
हाँ, उनकी साधना के दो पहलू थे जैसा पुस्तक बताती है। एक तो उनकी नियमित साधना, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव और गायत्री माता का पूजन, प्राणायाम और गायत्री मंत्र का जप शामिल था।
जी।
पर इससे भी ज्यादा जोर जो पुस्तक देती है वो उनके कर्मयोग के जीवंत दर्शन पर है। वो मानती थी, और ये उन्होंने जी कर दिखाया, कि अगर सच्चे भाव से ईश्वर को समर्पित होकर कोई काम किया जाए तो छोटे से छोटा काम भी योग साधना ही है।
मतलब झाड़ू पोछा करना या बर्तन मांजना भी योग हो सकता है।
जी।
ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है।
बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया, पुस्तक यही बताती है।
हाँ हाँ, ये हम अक्सर इन कामों को बहुत ही साधारण, बहुत ही नीचे का काम समझ लेते हैं।
सही कहा। पर उनके लिए अगर कर्म स्वार्थ और अहंकार के बिना पूरे समर्पण भाव से किया जाए तो वो ध्यान जैसा ही फल देता था। और सोचिए, घर के लोग तो थे ही, रोज दर्जनों कार्यकर्ता आगंतुक आते थे।
हाँ।
उन सबके लिए अन्नपूर्णा की तरह भोजन बनाना, और वो भी जैसा पुस्तक कहती है बिना किसी शिकन के, हमेशा चेहरे पर स्नेह और मुस्कान लिए हुए, ये उनके कर्मयोग का, उनके समर्पण का जीता जागता उदाहरण था।
पुस्तक में उनकी करुणा का भी एक बहुत ही दिल को छूने वाला उदाहरण है, एजू की कहानी। उसके बारे में कुछ बताएंगी?
हाँ, वो कहानी वाकई बहुत मार्मिक है। पुस्तक बताती है कि एजू, जिनका असल नाम गुलाबो था, वो एक बहुत ही जरूरतमंद बेसहारा विधवा नारी थी। वंदनीय माताजी ने सिर्फ सहारा ही नहीं दिया, बल्कि एक माँ की तरह उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा, उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया और उन्हें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया। ये उनकी गहरी करुणा और वात्सल्य को दिखाता है।
ये भी दिलचस्प है कि एजू के आने से थोड़ी मदद तो मिली होगी उनको, लेकिन पुस्तक ये भी कहती है कि उनकी अपनी मेहनत कोई कम नहीं हुई।
बिल्कुल कम नहीं हुई। घर के इतने सारे काम, फिर 2 बच्चे थे, सतीश और शैलो, उनका पालन पोषण, रिश्तेदार आते जाते रहते थे, उनकी देखभाल,
और साथ में दफ्तर के काम भी,
जैसे पत्रिकाओं पर टिकट लगाना। हाँ हाँ, टिकट लगाना और परम पूज्य गुरुदेव को पत्रों के जवाब लिखवाने में मदद करना। पुस्तक ये भी बताती है कि यही पत्र लिखवाने का जो समय था वो उनके लिए गुरुदेव का पास बैठने का, उनका सानिध्य पाने का एक जरिया भी था।
कमाल है, मतलब इतने सारे काम वो कैसे कर लेती थी, लोग तो हैरान होते होंगे। पुस्तक में लिखा है कि एक बार तो उन्होंने घर की पुताई जैसा भारी काम भी कर डाला।
जी हाँ, लोग वाकई हैरान थे उनकी इस क्षमता को देखकर। और जब एजू ने उनसे पूछा भी, जैसा पुस्तक में जिक्र है, कि आप में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति कहाँ से आती है?
हाँ, क्या जवाब दिया उन्होंने, ये जानना चाहूंगा मैं।
उनका जवाब ही उनके पूरे जीवन का सार है, समझिए। उन्होंने कहा, एजू, मन में समर्पण की तीव्रता हो तो वज्र भी फूल हो जाया करता है।
वाह, मन में समर्पण की तीव्रता हो तो वज्र भी फूल हो जाया करता है।
जी, उनके लिए हर काम, चाहे वो कितना भी साधारण लगे, वो अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को, खुद को समर्पित करने का एक तरीका था।
बिल्कुल।
और इसी समर्पण भाव से उन्हें काम करने में वही आनंद मिलता था जो शायद किसी को गहरे ध्यान में मिलता होगा।
तो मतलब कर्म ही उनकी पूजा थी।
बिल्कुल, कर्म ही पूजा थी।
तो इस अध्याय से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि वंदनिया माताजी का जीवन एक तरह से गहन साधना और निष्काम कर्म योग का एक अद्भुत संगम था। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे हम रोजमर्रा के साधारण से साधारण काम को भी दिव्यता से जोड़ सकते हैं।
हाँ, उन्हें एक साधना का रूप दे सकते हैं।
बिल्कुल,
अगर उसमें समर्पण और सेवा का भाव हो।
सच में उनका जीवन हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो रोज काम करते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, क्या हम उनमें भी एक गहरा अर्थ, एक ऊंचा उद्देश्य खोज सकते हैं।
निश्चय ही, ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम भी अपने कामों को उसी समर्पण भाव से कर सकते हैं, उन्हें एक उच्चतर लक्ष्य से जोड़ सकते हैं।
सचमुच एक विचारणीय प्रश्न है। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।